जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आयिर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहूलं अर्हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी हैं को स्वरूप जान राग से बड़ी भक्ति काय को नामाय स्तुति को चारी है धन धन तुम ही काज सब आज भई कर जोड़ी बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख तो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की प्रारंभिक गाथाओं का अपन रसपान कर रहे हैं। पुनः अपन 308 से 320 गाथाओं का पाठ करते हैं। पूरी विषय वस्तु एक साथ अपने ख्याल में आ जाए। पेज नंबर 9 से प्रारंभ हुआ है। जो
Thank you.
पूरी 320 गाथा तक की भी चर्चा कर चुके हैं। आपने ध्यान दिया होगा द्रव्य और पर्याय का अथवा कर्ता और कर्म का अनन्यपना बताने का प्रयोजन ये है कि पर द्रव्य से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये बात अपन हर स्तर पर देह का स्तर हो, लागादी भावों का स्तर हो अथवा ज्ञान ये की चर्चा हो, ये नियम सब जगह लागू पड़ता है। इसके बावजूद भी इस व्यवस्था को नहीं जानने वाला जीव, जिसे एक विचित्र नाम इसने दिया गया है 314-15 गाथा में, अव्यायत है। अज्ञानी को बहुत सुना आपने, अव्यायत है। तो अज्ञान की महिमा बताते हुए आचार्य देव ने महिमा माने अज्ञान भी कितना पावरफुल है, बस ये बताना। महिमा का मतलब तो आदर है, पूज्य है, ऐसा तो है ही नहीं, लेकिन व्यायत की अत्यंत महिमा है। व्यायत को जानने वाली वेद विज्ञान परिणति की कोई अत्यंत महिमा है। एक क्षण पूरे अनंत संसार को ध्वस्त कर दे रहे, तो अज्ञान कहता भाई साहब हम भी कोई कमजोर नहीं है, है? ये जो तुम अनादि काल से घूम रहे हो ना, बताओ तुम्हारे ज्ञान ने क्या किया? तो बोले वो तो निष्क्रिय है, वो तो वैसे ही कुछ नहीं करता है। तो तुम्हारे पर्याय ने क्या किया? उसने ज्ञान को नहीं जाना। ये नहीं जानने वाला जो अज्ञान है, जो तो अपने चेतन स्वरूप अकर्ता स्वरूप को नहीं जानने में अनंत प्रकार के मिथ्या को उसी में ही बैठे समझाने के लिए भले अलग करने पर कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है कि मैं रोटी बनाता हूँ ऐसा मानता है, मैं पैसा कमाता हूँ ऐसा मानता है, समझाने के लिए भले कुछ भी कहे, मगर उसमें जो मूल तत्व है मिथ्या होता वो अपने चैतन्य स्वरूप की विस्मृति वो ही मूल ही है। ये सब उसी में समा उसी में हिस्सा है। तो अज्ञान की महिमा दोपहर में अपन ने चर्चा की थी, कर्ता कर्म भाव नहीं है, निमित्त निमित्त भाव होने पर भी जीव और प्रकृति यानी जीव चैतन्य स्वभावी आत्मा और ज्ञानवरणादि जल कर्म, इनमें अन्योन्य निमित्त निमित्त भाव होने पर भी कर्ता कर्म भाव नहीं है, इसी चर्चा हुई। अभी 314-15 गाथा में देखिए, जब तक ये आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनचना नहीं छोड़ता, इसको हम इस तरह से देखते, जब तक अपने चैतन्य के लक्ष्य से नहीं परिणमता, चैतन्य स्वभाव को अपना मानते हुए जब तक नहीं परिणमता। और जैसे ही ज्ञान भी में अपन चर्चा करते हैं, पानी में तारे देखते हैं तो ऐसा लगता है तारे ही पानी में है, ये उदाहरण एक बार सोमगढ़ में हम थे तो उस समय लालचंद भाई ने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे समझ लीजिए रस ले लेकर के रोचक ढंग से समझाया, बड़ा मजा आया। हाँ, हाथ डाल दीजिए वो उसमें क्या है। और ये तो एक के जैसे रामचंद्र जी जैसे महापुरुषों की बारे में उसमें पढ़ा था मैंने, सन्मति संदेश में एक आख्यान आया था छोटी सी लघु कथा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना दूंगा ऐसा, और आचार्य मानसम्य देव ने तो इसको उदाहरण बनाया है, बालम विहार जल संस्कृत बिंदु बिंदु मन जन सहसा तो तुम जल संस्कृत बिंदु बिंब जल में स्थित चंद्र बिंद को बालम विहाय बाल मतलब बालक जी और बालक माने अज्ञानी जी मूर्खों को छोड़कर ऐसा कौन होगा जो जल में स्थित चंद्र बिंद को पकड़ने के लिए हाथ डालेगा। कोई समझदार से ये जानेगा कि इसमें चंद्र बिंद नहीं है। इसी तरह से ये व्यवस्था को नहीं जानना वो प्रकृति के अनुसार परिणाम है, वो दर्शन लोगों को उसकी प्रगति फॉलो कर रही है, उसका अनुकरण कर रही है। जैसा रस स्वाद मिथ्या वस्तु स्वरूप से विपरीत वो प्रकृति के उदय काल में विपाक में पका है, यहाँ अनुभव में जीव वैसे ही कर रहा है, इसका नाम प्रकृति के लक्ष्य से परिणमना है। तो जब तक ये प्रकृति के निमित्त उपजना विनचना नहीं छोड़ता तब तक वो अव्यायत है, मिथ्या दृष्टि है और असंग, ये तीनों गुण कर्ता कर्म अधिकार से चले आए हैं। तीन प्रकार का परिणाम विकार स्फटिक मन में है, जैसे वो नीला लाल हरा तीन तरह का मान लो डाक बोलते हैं, वो कपड़ा लगाया गया कोई देश उसकी है तो स्फटिक मन में तो दिखता है। वाह, ऐसे चैतन्य की चैचित परिणति चिर विवर्तन की ग्रंथि बोलो स्थलित मन का स्वच्छ परिणमन के समान है, और उसमें निख्यात का रस है उसका उपचार करके जीव को निख्या दृष्टि के सुनना ध्यान से जरा, ये भी उपचार है। नए चक्र में असरभूत व्यवहार के नौ तरह के प्रयोग बताए, द्रव्य का द्रव्य में उपचार, पर्याय का द्रव्य में उपचार, द्रव्य का गुण में उपचार, गुण का इस तरह के नौ तरह के बता रहे। तो परिणाम जो विख्यात है वो तो निश्चय से जैसा है वैसा है, मुझे आया, पर उस परिणाम को देख करके शुद्ध चैतन्य को ये कहना अच्छा जैसे दर्पण में मोर है ऐसा कहना ये कौन सी नहीं का कथन है। दर्पण में मोर है ये कहना ये कौन से नए का कथन हुआ, असल रूप व्यवहार ही हुआ ना। और वो तुम तो दर्पण निश्चय से मोर झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है, अरे वो झलकन तो मोर है ही नहीं, वो तो दर्पण ही है। ठीक उसी तरह चेतना के चैतन्य के परिणमन में उसके सफल प्रकाशक संबंध जो परिणमन है उसमें ये मोरा द्वेष का कलर दिखाई देता है, तो चेतना को मोही राजी द्वेषी कहना ये वास्तव में देखा जाए तो ये अशुद्ध व्यवहार आगम शैली में इसे अशुद्ध निश्चय ही है। आगम शैली से देखो तो अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन है, निश्चय से मतलब वो राज है नहीं, जबरदस्ती जीव को मिथ्या व्यक्ति कह दिया ऐसा नहीं है, मिथ्या तो है अशुद्ध चैतन्य को मिथ्या व्यक्ति देना है, तब तक ये अव्यायत है मिथ्या दृष्टि है असंग है। ये तीन प्रकार का चैतन्य का परिणाम विकार कहा गया है। और जब आत्मा अनंत कर्म फल को छोड़ देता है वह उसके जानने में आते अनंत कर्म फल, हम पकड़ने आते हैं अनंत कर्म फल, अपने थोड़े बहुत आते हैं मकान मिल गया कि गाड़ी मिल गई है विनोद बंद हो गए ये कर्म फल है कि नहीं है, अपने को तो ये पकड़ में आता है कैंसर हो गया बीमारी हो गई इत्यादि इत्यादि। अरे भैया जो अनंत प्रकार के कर्म हैं उनके निमित्त से चाहे घाटी हो चाहे घाटी हो, घाटी के निमित्त से जीव के परिणामों में घाटी के निमित्त से बात संयोग हो, तो संयोग के लक्ष्य से भी जीव वैसा सुख दुख का विधान करता है तो उसको कैसे छोड़ेगा। प्रत्येक न्याय को ग्रहण किया, चैतन्य को ग्रहण किया तो बाकी सब छूट गए। जब आत्मा अनंत कर्म फल को छोड़ता है तब ज्ञायक है, दर्शक है, मुनि है, बोलो विमुक्त है, यानी मुक्त हो गया, सिद्ध बन गया, बंध से रहित हो गया, वो मुक्त हो गए। अपन इसकी चीजा बाद में पढ़ेंगे, इस कार्यक्रम के बाद में जाइए, जो अपना जो रूटीन में चलता है स्वाध्याय, तो जैसेचार्य की भी पढ़ेंगे, अमृत चंद्राचार्य की भी पढ़ेंगे तो विशेष चर्चा तो होगी। अभी गाथा के आधार से ये बताओ, ये सोचो कि जीव ने अनंत कर्म फल को नहीं छोड़ा, चैतन्य को नहीं जाना तो ज्ञाय नहीं है, तो जड़ हो गया। उसने कहा अज्ञायक है और जान ले रहे तो अज्ञायक है। वजी वो फार्मूला है कि जो गुरुदेव से पूछा गया कि आप कहते हो कारण परमात्मा, कारण परमात्मा कार्य को हुआ तो कारण क्या था, तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया, तुमको पता है तुमने कारण का स्वीकार किया है। देखो बहुत मार्मिक बात है, जो अनादि निधन अखंड ध्रुव तत्व है ना, वो तो वास्तव में नित्य है। ये तो उसको देखने वाला ज्ञान, उसमें अपनापन करने वाली श्रद्धा, उसमें लीन होने वाला चारित्र, खेल तो सब यहाँ होना है। संसार का खेल भी इसी में हो रहा है और संसार के अभाव का भी प्रजमन तो इसी में ही होना है। तो न्याय से तो रहा है, पर्याय को उसका क्या फल मिलेगा। इसीलिए उदाहरण आता है, जैसे कोई कहे सुमेरु पर्वत के नीचे लाखों टन स्वर्ण है उसके अंदर, सुमेरु पर्वत की नींव में, अपने को 10-20 ग्राम मिल जाए वो काम का है, वो सुमेरु पर्वत के नीचे वाला कौन से काम का है। ऐसे इस अनंत शक्ति, अनंत अखंड पिंड त्रैकाल चैतन्य स्वभाव, ये तो इसलिए बताया जाता है कि अपने को वैसा स्वरूप अनुभव करे परिणाम। लेकिन तो पर्याय का होता है, अनुभव तो पर्याय का होता है, पर्याय में होता है उसके सत्कार अनुभूति की कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपदान। अच्छा पर्याय में जो आनंद आया द्रव्य को क्या फायदा हुआ, जो ध्रुव से काली जिसको देखने से आनंद आया ये भी व्यवहार है खड़े कर, उसको देखने से आनंद आया ये भी अद्भुत व्यवहार का कथन है। फिर क्या करे, वाणी निकलेगी तो व्यवहार तो आएगा ना, आप हंस हंस का व्यवहार में त्याग यद्यपि प्राग पदाभ्याम त्रिनीत पदानाम हंस हस्तावलंब। तो जब उसने जो द्रव्य का लक्ष्य किया है तो द्रव्य के ऊपर कृपा करके नहीं किया है, अरे बेचारे को कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, उसको कोई भाव देने वाला नहीं है, चलो कम से कम अपन तो भगवान की दर्शन कर लो तो भगवान की कुछ भगवान को कहलाएंगे, कोई पूजा नहीं करे, अभिषेक नहीं करे, दर्शन नहीं करे तो भगवान सूखे बैठे हो। ऐसे जो ध्रुव परमात्मा ऐसे चुपचाप बैठा हुआ तो ये भी पर्याय उसको देखने वाले है, तो जिसने देखा उसने उसके ऊपर कृपा करी की खुद के ऊपर कृपा करी। अच्छा इन भगवान के अपन दर्शन करते तो इनके ऊपर कृपा करते या अपने ऊपर कृपा करते है, ऐसे ये भगवान है। तो उसने जो आनंद प्रकट हुआ निर्मल निराकुल बिना विकल्प का पूरा आनंद आनंद, तो किसको मिला, खुद को ही मिला, समझ में आया। इसलिए चेतन का आत्मा अनंत कर्म फल को छोड़ता है, यानी उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करेगा, ममत्व नहीं करेगा। जब भैया उपदेश में नास्तिक परत कथन बहुत होते हैं, उसके बिना समझाया नहीं जा सकता। कार्य तो अच्छी भी पद्धति से होता है, छोड़ना है कर्म फल को, छोड़ना है कैसे छोड़ना है, ऐसे बने रात्रि भोजन छोड़ना है, वो तो जल्दी क्रिया है, उसको क्या छोड़ना, नहीं, रात्रि भोजन का जो राग है ना उसको छोड़ना, वो तो अपने में होता है ना, तो उसको छोड़ना। अरे उसको कैसे छोड़ना, उसको छोड़ने की क्या विधि है, है? तो चैतन्य को ग्रहण करना है तो छूट गया। ऐसे अनंत कर्म फल को छोड़ना माने चैतन्य को ग्रहण किया, तब ये आत्मा व्यायक दर्शक मुनि विमुख बंद रहे इत्यादि हुआ। इसी विषय को और आगे बढ़ाया है आचार्य ने, तो कंटिन्यू चल रही है धारा 316 नंबर में। अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ कर्म फल को भेदता, गजब वाक्य को कथन शैली समझने लायक है मालूम है। अज्ञानी कर्म फल को भोगता है और ज्ञानी तो हृदय में आए हुए कर्म फल को जानता है, भोगता नहीं। जो यहाँ जानने का लिखा है भैया, वो जानना एक बात है, जो वास्तव में जो है जानना किसे कहते, ये बहुत मार्मिक बात है। ये पदार्थ, ये पदार्थ का ज्ञान में आ जाना, इसको जानना कहते, ये तो संबंध नहीं है। ये अज्ञानी ऐसा ही मानते कि ये ज्ञान में आ गया, उनकी दृष्टि में परिभाषा यही है, इसलिए निषेध करते ये ज्ञान नहीं जानता। बहुत मार्मिक बात कहना चाहते, बात समझ में आई थोड़ी बहुत है क्या? जानना किसे कहते, ऐसे ज्ञान में ज्ञान की योग्यता से उसकी स्वच्छता से परमन में और सामने ये हो तो ये के निमित्त ज्ञान की क्षयोत्तम की योग्यता के निमित्त इत्यादि इत्यादि, ये ज्ञान में ज्ञान से ज्ञान का ज्ञान के द्वारा परमन होता है। और उसको ये की तरफ से बोलो तो उसने ये को जाना है, तो कहा जाता है ये कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। राशि कर्म का क्षय होता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है, तो क्या होता है? आत्मा का ज्ञान होता है, पहले नहीं था। ये बात जरूर है, पहले भाव प्रति ज्ञान के माध्यम से था, अब सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान के माध्यम से। और केवल ज्ञान का भी अगर प्रयोगशाला में पोस्टमार्टम किया जाए तो क्या है वो केवल ज्ञान, क्या चीज है? यहाँ तो बहुत चलता है ये देवलाली में अपने चर्चाओं में, तुम्हारा चित प्रकाश कई वर्ग कहे तुम व्यायक लोकालोक। हे नाथ, ये केवल ज्ञान जो है ये आपके चैतन्य का प्रकाश है, तो हमें तो लोकालोक दिखाई दे रहा है, है? तो बस ये यही बात है, दिखाई दे रहा मैंने सब उस प्रकार का ये आकार जैसा परमन हो रहा है, है? तो इसको ही जानना चाहिए। ज्ञान में ज्ञान की योग्यता से जो आकार बनते, अरे ये नियम अपने स्वकृत के स्वे के बारे में भी यही नियम है। जैसे ये पंखा ज्ञान में प्रवेश नहीं करता है कि ज्ञान की पर्याय में सरकारी गति भी प्रवेश नहीं करता, कितनी बार बोलते पर्याय में द्रव्य आवतु नहीं, पर्याय में द्रव्य नहीं आता, उसी सामर्थ्य का ज्ञान आ जाता है। अब द्रव का ज्ञान हुआ ये सद्भूत व्यवहार है, और अन्य जीव का ज्ञान हुआ ऐसा कहना भी असद्भूत व्यवहार है। परमात्मा से जो ज्ञान है जो है तो है, ख्याल में आया? जब अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ, अनादि से यही जैसा चल रही है, तो ये सब जो ये तो वट वृक्ष है आदि के अधिकार, सारे जीव शुरू की 12 गाथाओं में पड़े हुए और ज्यादा ले तो अपन 17-18 गाथा तक 19वीं गाथा से चरण है। अज्ञानी का स्वरूप बताना प्रारंभ, ये जीव कब तक अज्ञानी रहता है? तो ये दूसरी गाथा जो पुर्गल करने के प्रदेशों में स्थित है उसे पर समय जानना, जो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित है उसे स्वसमय जानना। और यहाँ अज्ञानी को प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ, यानी जैसा कर्म प्रकृति में विपाक जैसा रस पका है, अपने ज्ञान में अपने स्वरूप को अपने ज्ञान स्वभाव को वैसा अनुभव का हुआ, अशुभ का उदय आया तो मुझे अशुभ का उदय आ गया है, कर्म प्रधान माता यद्यपि अपने आप आगम में बहुत सशक्त है, पूरा करना योग का महल उसी पर बना हुआ है, और मुझे एक देवी नंदन जी को याद करते हैं सत्संग में, जो बिगर परिषद का अधिवेशन हुआ था सोनगढ़ में, तो बहुत से विद्वान आए थे और बहुत प्रभावित हुए थे गुरुदेव की देखना से। एक पंडित जी बोलते थे, महाराज हम सब लोगों की पढ़ाई ही उल्टी है अनाधिकार शुरू से, सब पंडितों की पढ़ाई उल्टी माने में निकल। वास्तव में ये जो बात आई है तो सब जिनागम की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे नया आविष्कार हुआ हो इस युग में, ऐसी बात है। तो कर्म प्रकृति के अनुसार अपने को अज्ञान के कारण अनुभव करता हुआ यूं कहो, अथवा अनुभव करने का ज्ञान है। चैतन्य में क्या है, देखो वो बाबू जी की पंक्ति है ना, निखिल जगता दिखति सब प्राण चेतना अपने से अनजान, ज्ञान ज्ञान से अनजान है, इसका नाम अज्ञान है। और निखिल जगता दिखति सब प्राण, दुनिया के सारे पदार्थ ऐसा लगता है कि वही मेरे में ज्ञान डाल रहे हैं, घड़ी का ज्ञान, घड़ी से बहुत तो नहीं मानते बताए सदरूप का, ये तीन पॉइंट बौद्धों के दर्शन में आते हैं। देह से उत्पन्न होता है, देह में व्यवसाय करता है, सदस्य बचाए उपयोग जो है वो देह में परिणमता है, देह में व्यवसाय करता है, और सदरूप ये रूप हो जाता है, ऐसे ज्ञान मानता है। निखिल जल का सारे जड़ पदार्थ मुझे ज्ञान के कारण दिखाई पड़ते, तो सब प्राण माने चैतन्य दिखाई पड़ते, और जिस चेतना में ये सब दिखाई दे रहे हैं, जिस चेतना के कारण ये चैतन्य लोग खड़ा हुआ है, वो अपने से अनजान है। तो प्रकृति के स्वभाव में स्थित, चैतन्य में स्थित नहीं है माने वो जड़ में स्थित, तो जड़ बन गया, जड़ के अंदर चला गया। जब एक जरूर दूसरे जरूर को छूटा नहीं है, तीसरी गाथा में कहते हैं कि अपने अनंत गुणों के धर्मों के चक्र को चुंबन करता है तो दूसरे को स्पर्श भी नहीं करता, तो फिर उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित कैसे होगा, प्रकृति में कैसे ये जीव स्थित हो, प्रकृति माने जल कर्म उसमें कैसे स्थित हो जाएगा। अरे भैया स्थित होने के लिए उसमें जाने की जरूरत नहीं है, अपना द्रव्य क्षेत्र काल सावती सीमा रेखा तोड़ कर तो उसके अंदर घर में घुसने की जरूरत नहीं है, वो तो यही बैठे बैठे हो जाए। अब तो युद्ध भी ऐसे होने लगे, अरे एक बार समझो अपने घर में ही बैठे बैठे वहाँ जाके दूसरी जगह कीड़ा पड़े जाओ वही मिठाई डाल दी। तो श्रद्धान में अपना तो हुआ माने उसमें स्थित हो गया, ये कोई क्षेत्रीय स्थिर होने की बात नहीं है प्रदेशों की, ये मान्यता में जो जिसको अपना मानता है वो उसमें स्थित है। मैं पहले जब यहाँ जाता था अमेरिका, तो वहाँ के लोगों से कहा करता था, हम लोगों की अपेक्षा आप लोगों को समय दर्शन जल्दी हो सकता है, वेद ज्ञान जल्दी, हर एक की बात कर रहे हैं, भारत से वहाँ रहते वहाँ ऐसा वातावरण सब ठीक है। तीसरी पीढ़ी हो गई उन लोगों की, 50-50 वर्ष हो गए वहाँ रहते हुए, है बोलो जी। लेकिन अभी भी उसी देश को टैक्स देते, उस देश की हवा में सांस लेते, वहाँ की माटी का अन्न खाते हैं, वहाँ के नियमों का पालन करते हैं, वहाँ के संविधान के अनुसार रहते हैं। उनसे पूछो आप कहाँ के हो, हम तो अहमदाबाद के। अरे इससे बढ़िया भेद ज्ञान हो क्या हो सकता है। बोलो क्या नीरज भाई, हम तो रोज रखे है, समझ में आया, अभी तक कितने साल हो गए मुझे पता नहीं, नहीं देती है। ये तो कौन कितने है, तो हम शरीर से जहाँ है वहाँ है ऐसा नहीं है, हम अपने तो बुद्धि से जहाँ जिसमें है वहाँ है, समझ में आया ये है। तो कर्म प्रकृति के स्वाद को अपना जाना तो जीव कर्म फल को भोगता है, उसको अपना मानता है, उसमें स्थित है। इससे विपरीत ज्ञानी की प्रगति, उसने चैतन्य में अपनापन किया है तो कर्म फल आते हैं जाते हैं, जैसे पर्दे पे फिल्म चलती है, अच्छी भी सीन आते हैं, बुरे भी आते हैं, दुख के आते हैं, शोक के आते हैं, पर्दा दुखी हो जाता है। किसी भी अच्छा हो गई, किसी भी माँ का बेटा मर गया, कोई शहीद हो गया, फिल्म में समझिए माँ रो रही है, घर वाले रो रहे हैं, पिता को अग्नि दी जा रही है, बोलो पर्दे पे क्या प्रभाव पड़ता है? वो फिल्म का चित्र है, वो पर्दे का नहीं, पर्दे की छाती पे दिखेगा, बिना पर्दे के पिक्चर नहीं दिखेगी। लेकिन पिक्चर का और पर्दे का क्या संबंध है? वास्तव में देखा जाए तो अत्यंत अभाव समझ में आया। खुश सुखी के खुशी के प्रसन्न हो, किसी की शादी हो रही हो, सेनाई बज रही हो, तो पर्दे पे क्या प्रभाव पड़ता है? ये सदाई देवी की बात नहीं है, ये ज्ञान पर्याय की बात है। ज्ञान पर ज्ञान की आत्मा है ना, वो ज्ञान पर्याय की तो आत्मा आत्मा मन में, तो ज्ञान की तो आत्मा है, तो वो ज्ञान पर्याय है। जो उदयागत कर्म के जो नाना प्रकार के फिल्म आते हैं जाते हैं, वो तो उससे अप्रभावित रहता है। अज्ञानी का ज्ञान भी कृष्णा जी है, क्योंकि उसने अपना ज्ञान समाप्त छोड़ दिया क्या? लेकिन मोह के नशे में वो वैसा अनुभव नहीं कर रहा, तो ज्ञानी अनुभव करता है। इसलिए ज्ञानी कर्म फल को जानता है, जानने में आ जाता है। पर्दे का तो उदाहरण तो एक देश लागू होता है, तो पर्दे को पता नहीं है कि मेरी छाती में सेनाई बज रही है कि युद्ध के ढोल बज रहे हैं, ये क्या हो रहा है, पर्दे को पता नहीं है। लेकिन ज्ञान पर्दे को उसकी सर्वोत्तम गत योग्यता के अनुसार पता चल जाता है। ज्ञान आज राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, ज्ञानी उसमें जुड़ते नहीं है, इसलिए उसे अपना नहीं मानते। वो संचित नहीं बहुत ज्ञान ने भी पूरा का पूरा समय साल वापस समझ लो रिपीट कर दिया है। अभी मैंने सारी सारी 317 गाथा बड़ी कठोर है। सदरीत पर कर सातरी प्रकृति अभव्य नहीं सजे, इसकी चर्चा हो चुकी है। अभव्य तो कभी नहीं सजे, तो फिर मिथ्या दृष्टि जब तक मिथ्या का हो जाए तब तक नहीं सजे। लेकिन वो भविष्य की बात छोड़ो कि अभव्य अनंत काल तक जो है वो प्रकृति के अनुसार परिणम परिणम वो अनंत काल का नहीं छोड़ेगा। और मिथ्या दृष्टि का जब समझ लो काल आ जाएगा, तो काल लंबी बलते दयाल तुम दर्शन पाए भयो विशाल, मन शांत भयो मिट सकल स्वातम रस दुख निधन। पूरे यहाँ तक है वो काल लंबी, अकेले दर्शन हुए कृष्ण जी ऐसा नहीं, स्वातम रस चाक्य हो तो वो मान लो अज्ञानी को मिथ्या दृष्टि है उसको तत्काल बात करना ही होना है, और अवध को कभी नहीं होना। वर्तमान में दोनों में क्या फर्क है? बात समझ में आई? जैसे वो वैसे वो भी अनंत दुखी, वो भी अनंत दुखी, यानी वो अवध है, इसलिए वर्तमान में समझ लो वो दुखी है ऐसा नहीं है। अभव्यत्व के कारण कोई दुखी नहीं होता। कैसे? क्या अपने अभव्यत्व का क्या स्वरूप है? कभी दुखी नहीं होगा, दुख का कभी अंत नहीं होगा, ये है उसकी अभव्यता। लेकिन दुख का कारण तो मिथ्या है ना, बोलो अभव्य वो तो पारिणामिक भाव है, अभव्य पदा तो पारिणामिक भाव है, वो उसकी पर्याय गत सहनी योग्यता है। उसका कर्म के उदय उत्तम छयोत्तम से रजनी भाई कोई संबंध नहीं है अभव्य। इसलिए अभव्य तो अनंत काल दुखी रहेगा, क्योंकि कभी मिथ्या को नहीं छोड़ेगा, इसलिए दुखी रहेगा। तो दुख का कारण मुझे भी निश्चित करना है कि वर्तमान में अभव्य और मिथ्या दृष्टि दोनों एक से ही है। ये तो अगर सदरी पढ़कर शास्त्र भी अच्छे से साथ के पढ़े, नए व्यवस्था से नित्य से ऐसा व्यवहार से ऐसा प्रमाण से ऐसा व्यक्ति का विषय ऐसा ज्ञान का विषय ऐसा पूरी कथा और चारों नियमों की अपन तो खाली एक पॉइंट को केंद्रित करके चर्चा करते हैं और वो संभव सबकी चर्चा करेगा फिर भी बन जाए श्रोताओं का दिमाग में कंफ्यूज रही है तो वे ऐसा कह रहे शाम को ऐसा कहते हैं एक जब वो उजला बहन के शिविर लगते हैं तो उत्तर केंद्रित रहता है जैसे जब ये चलता है तो उत्तर केंद्रित रहता है तो एक एक चीज से पूरी चर्चा तो होती है सबसे हम खोल के तो सारी कथा जाने लेकिन चैतन्य को ग्रहण नहीं करे जिस ज्ञान में उसने शास्त्रों के नए है श्रीमद जी का वो है ना यम नियम संयम आप पियो उसमें ये भी आता सब शास्त्र के नए धार दिए हृदय में सब शास्त्रों को बराबर करना ही उसको चढ़ना ही उसको पचमा ही उसको सब पढ़ा अपने को नहीं पढ़ा चैतन्य को ग्रहण नहीं किया जैसे दूध और गुड़ पीता हुआ भी सर्प निर्मित नहीं होता है कितने दूध पिलाओ उसके उसके अंदर जहर के परमाणु इतने तीव्र अनुभाग वाले होते हैं इतने पावरफुल होते हैं कि वो जहर मिटने के बजाय दूध को जहर बना देता है समझ में आया जितने भी संबंध समझ दूध और जहर की बात है ऐसे भैया ये जिनमानी ये चार अनुयोग ये तो दूध के परमाणु है इसको पच जाए तो वो तो पौष्टिक होता है दूध पच जाए इसको तो पौष्टिक होता है लेकिन अगर नहीं पचे समझ में आया ना और अंदर में मिठास का विष बैठा हुआ है तो ये जीवाणु जो है वो जाकर के और जहर बन जाते हैं मिथ्या तलनाम देखो ज्ञान के प्रकाश देखो आपस पर हाथ देखो मानी से बधानी है कैसे ये जीवाणु जिनवाणी पढ़ने का क्या फल होना चाहिए मिथ्या का नाश होना चाहिए मैं जब प्राथमिक अधिकारी चर्चा कभी भी कहीं शुरू करता हूँ तो ये बात कहता हूँ तो माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है ऐसा गवर्नमेंट भी बोलती शिशु के लिए माँ का दूध से बढ़िया आहार और कोई नहीं सोचो वो बालक कितना अभागा हो रहा कि जिसे खुद भी माँ का दूध ही नहीं पके है श्री जिनवाणी माता का दूध अज्ञान जीवों के लिए सर्वोत्तम आहार है वास्तव में मिथ्या तम नाश देखो जिनवाणी का भी एक शक्ति है मिथ्या का नाश करने के लिए लेकिन हमारे भीतर मिथ्या कितना प्रबल रहता हुआ है कि ये दूध पीकर के ही और मिथ्या जाने के बजाय उनके और मजबूत हो गया पुष्ट हो गया कैसे हो गया इसका कोई इसकी विधि इसकी कोई व्यवस्था इसका कोई स्वरूप कहीं आता है ये निश्चय भाग कैसे होता है ये व्यवहार भाग कैसे होता है ये उभया भाग कैसे होता है समझ में आए वो दूध विकृत हो जाता है समझ मिथ्यास में जाके मिल गया समझदार का दूध किया और मिथ्यास में मिल गया तो निश्चय भाग हो गया ऐसा हम कहता है वह गजब की कठोर उदाहरण सांप दूध गुड़ पीता हुआ भी निर्मित नहीं होता उसका विष नष्ट नहीं होता ऐसे अज्ञानी जीव शास्त्र पढ़कर भी प्रकृति को नहीं छोड़ता है तो अपने को पढ़ना के लिए पढ़ना तो अपनी बात करो भैया इस तरीके से पढ़ना कि वो जो दूध जो है वो मिथ्यास का नाश करने में निमित्त बने मिथ्यास को बढ़ाने में नहीं यही प्रश्न है वैराग जो प्राप्त जो ज्ञान जन है कर्म फल को जानता वाह अज्ञानी भोगता और ज्ञानी जानना इसलिए लिखा है कि वो उसमें लिप्त नहीं होता उसमें तन्मय नहीं होता जब जैसे ज्ञान स्वभाव वेद तन्मय नहीं होता ज्ञान पर्याय देयाकार ज्ञान भी वेद तन्मय नहीं होता ऐसे वेद ज्ञान प्रगति भी उदय में कर्म नहीं ज्ञान मुख्यतः उदय की बात कर्म फल को जानता मात्र है जानने का अर्थ है करता नहीं है भोगता नहीं है कड़वे मधुर बहु भांति को इससे अवेदक है कहा अभी दृष्टि की प्रधानता की बात है आगे इसमें इस तरह की प्रश्नोत्तर भी है जैसे न चार वगैरह की टीका में। अब आप सोचो लक्ष्मण जी 6 महीने तक रामचंद्र जी जो है लक्ष्मण के शव को कंधे में लेके घूम रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और ये दाता कैसी ये ज्ञानी जो है कर्म फल को जानता मात्र है। ये दिखा दे सीता जी को जंगल में छोड़ दिया अथवा रावण ले गया, रावण ने कितने उनके ऊपर प्रश्न उत्सर्ग किए, ये ज्ञानी उनको जानता मात्र है उसको भोगता भोगता माने एकत्र बुद्धि। तो वो लोक में भी हम जिसे अपना नहीं मानते क्या उसे भोगते। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से कहीं जाना है, बॉम्बे जाना है, अब किसी को मालूम पड़ेगा कि आपको बॉम्बे जाना है, शाम को जाए कहाँ जाए कैसे जाए, देखेंगे जैसा होगा हमारी गाड़ी में जगह है आपके लिए समझिए गाड़ी में है तो यूज तो कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी में बैठ कर के जाने में जो भोगना होता है उपयोग करते हुए भी क्या हम उस गाड़ी को के आनंद को या उसको फल को हम भोगते। लोक में क्या व्यवस्था है समझ में आया, बैठे हुए भी उसका उपयोग करते हुए भी 4 घंटे में मामले पहुंचते हुए भी पहुंच गए, जान दिया कि इनकी गाड़ी है इसमें बैठे हैं 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। मेरा पर अपनत्व हुए बिना कर्तत्व और भोक्तत्व हो ही नहीं सकता, समझ में आया। ये वस्तु की व्यवस्था है अपने पन में ही भोगना होता है, पराये पन में जहाँ अपना पन नहीं है वहाँ भोगना नहीं होता। तो ज्ञानी उस कर्म फल को अपना स्वरूप नहीं जानते, उसके वजह से होने वाले सुख दुख को अपना स्वरूप नहीं जानते, तो जानते मात्र रहते हैं अपना नहीं मानते, इसलिए भोगते नहीं। ये बात आगे भी कहिए, बहुत प्रकार के कर्मों को न तो करता है न भोगता है, किंतु पुण्य और पाप रूप कर्म बंध को और कर्म फल को जानता मात्र ऐसे परिणाम होते हैं। ये बड़ी बहुत मार्मिक बात है भैया। ये देखो फल द्रव्य में ऐसा कुछ हो गया तो हमने भोगा नहीं है जाना मात्र है, इसी से थोड़ा गले उतर भी जाता है। ये अपने परिणाम में सुख दुख हो रहा है अपने भावों में, समझिए अपने शरीर में पीड़ा हो रही है और उस पीड़ा का चारित्र मोह के वजह से घृणा भी हो रहा है, दुखी भी हो रहा है। रामचंद्र जी लक्ष्मण के योग में दुखी भी हो रहे और दुख को भोग भी रहे, दुखी हो रहे हैं। ये तो दुख का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार से बोलना पड़ता है मजबूरी है, गजब बात है। अपने में वो परिणाम हो रहा है तो क्यों नहीं भोगेगा। अरे अपने में होने से क्या होता है, अपने घर में तो मच्छर भी होते हैं, चूहे भी होते हैं, चोर भी घुस जाता है, तो क्या भोगते है, जान लेते हैं और उसको दूर कर देते हैं, अपना मानते नहीं है इसलिए भोगते हैं। ये बड़ा वेद विज्ञान का एक अद्भुत पलटा है जो स्कूल समय काल में वेद ज्ञान का कलर ही स्प्रे किया गया है। हर अधिकार वेद ज्ञान पर ही खड़ा हो जाए प्रत्येक अधिकार। फिर बाद में अपनी ऊपरी 320 गाथा है उसी बात को आती, मतलब उसकी भूमिका यहाँ तक बनाई जाता है जहाँ से उन्होंने ज्ञानी का वर्णन 318 गाथा से चालू किया तो 320 गाथा तक ले जाते और आगे तो फिर करता बात का निषेध किया। एक बात मैं कह के बात पूरी करता हूँ, वो प्रकरण जो 321-22 गाथा में है उसमें ये आएगा लोक में ऐसा मानते हैं कि विष्णु जो है वो जगत के पालनहारे, वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे न्यारे विष्णु जगत का करता है। तो अगर श्रवण जी ऐसा मानते हैं कि मैं जीवों की रक्षा करता हूँ तो दोनों एक के हो गए। इसके लिए वो बात आती है कि सामान्य जनमत से काम न मोक्षोपी मोक्षुता, ये जो आदि कलश आएगा ना इसमें 199 पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जनवत् तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षुताम्। मैं इसलिए इसको याद दिला रहा हूँ कि प्राय सभाओं में इस संदर्भ से अलग ऐसी बात मनुष्यों को भी मुक्त नहीं होता, ऐसी बात कही जाए मनुष्यों को भी मुक्त नहीं होता अथवा मोक्ष की इच्छा से भी मोक्ष नहीं होता। बात तो सही है लेकिन उसको समय काल में लिखा है कि मनुष्यों को भी मोक्ष नहीं होता, वो खुद मोक्ष की इच्छा वाली बात नहीं है। यहाँ तो जो श्रमण ऐसा मानते हैं कि मैं छत्ताई जीव की रक्षा करता हूँ वो मनुष्य तो हुए है, मतलब मुनि हुए है तो मनुष्य कह दिया उन्हें भी मोक्ष नहीं हो। ये पूरा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार ज्ञान के अकर्तव्य स्वरूप को बताने के लिए आचार्य ने मानो दोबारा कर्ता कर्म अधिकार लिखा है। अपन सब इसका और भी गहराई से आनंद लेंगे। अभी अभी के जो और जो कार्यक्रम चलते हैं वो करेंगे। मैं अभी यही विराम लेता हूँ। यही ना, हाँ।